आप सुन रहे हैं सुनो किताब।
हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अनु है और मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस की स्टूडेंट हूँ। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। ये क्लास 10th के साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। आज की क्लास को शुरू करने से पहले हम रिवाइज कर लेंगे कि हमने पिछली क्लास में क्या क्या पढ़ लिया था। इस चैप्टर में हम लोगों ने सबसे स्टार्टिंग में ये पढ़ा था कि केमिकल रिएक्शंस क्या होती हैं। केमिकल रिएक्शंस होती हैं कुछ ऐसी प्रोसेस जो किसी सब्सटेंस में जब आती हैं तो उसमें कुछ केमिकल चेंजेस आते हैं, उसी प्रोसेस को हम लोग केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो जब केमिकल रिएक्शन को हम लोगों को पेपर पे रिप्रेजेंट करना होता है, पेपर के ऊपर लिखना होता है कोई रिएक्शन, तो उसको कैसे लिखा जाता है ये हमने पिछली क्लास में सीखना शुरू किया था। कोई भी केमिकल रिएक्शन को हमें लिखना है कि वो रिएक्शन किस तरीके से हुई है। जब हम उसे पेपर पर लिखते हैं तो उस रिएक्शन को केमिकल इक्वेशन कहा जाता है। मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर आप लोगों को ये बताना है कि कोई रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम रिबन की ऑक्सीजन के साथ में, या फिर ऐसे कहें कि मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया गया है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो वहां पर बेसिकली हुआ क्या है, मैग्नीशियम ने ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन की है। अगर हमें ये बात बतानी है, मान लीजिए पेपर पर लिखना है, तो हम या तो ऐसे सेंटेंस की फॉर्म में लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम रिबन इज बर्नड इन ऑक्सीजन एंड इट्स गेट कन्वर्टेड इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, ऐसे हम लोग सेंटेंस के फॉर्म में लिख सकते हैं। लेकिन मैंने आपको ये बताया था कि सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं। जब केमिकल इक्वेशंस लिखी जाती हैं किसी भी रिएक्शन की, तो वो सेंटेंस के फॉर्म में नहीं लिखी जाती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत ज़्यादा जगह लेता है पेज के ऊपर, काफ़ी बड़े फॉर्म में आपको यहाँ पर लिखना पड़ रहा है, तो इसीलिए इसको और छोटा किया जाता है, इसे और सिंपल किया जाता है। तो मान लीजिए कि अगर हम किसी सेंटेंस को और छोटा करना चाहते हैं तो हम ऐसा कर सकते हैं कि सेंटेंस को ना यूज करके हम केवल जो मेन वर्ड्स हैं वो ही लिख दें, तो भी हम लोग एक केमिकल इक्वेशन को लिख सकते हैं। तो मैंने आपको नेक्स्ट ये सिखाया था कि कोई केमिकल इक्वेशन को वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं। सो, अगर आप लोगों को ये बताना हो कि कोई रिएक्शन हुई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में और जो प्रोडक्ट बना है वो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो ये आप लोग वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, और ये जो मैंने वर्ड कहा गिव्स ये बता रहा है कि प्रोडक्ट जो लास्ट में बन करके तैयार हुआ है वो बना है मैग्नीशियम ऑक्साइड। और यहाँ पर जिन दो चीजों के बीच में रिएक्शन हुई है जिससे मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है वो क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं रिएक्टेंट्स। रिएक्टेंट्स आपको समझना है क्या होते हैं, रिएक्टेंट्स वो चीजें हैं जिनके बीच में रिएक्शन हुई है, और प्रोडक्ट वो चीज है जो लास्ट में बन करके तैयार होती है, हमें लास्ट में रिएक्शन के होने के बाद में मिलती है। और अगर आप लोगों को ये बताना है कि रिएक्शन रिएक्टेंट्स के बीच में हुई है और प्रोडक्ट दूसरा कुछ बन के मिला है, तो हमेशा आप लोगों को रिएक्टेंट्स लिखने के बाद में एक एरो लगाना होता है जो कि पॉइंट कर रहा होता है प्रोडक्ट की ओर, प्रोडक्ट की ओर वो इशारा कर रहा होता है, जिससे आप लोगों को ये पता चलता है कि रिएक्शन कैसे हुई है, रिएक्शन हुई है रिएक्टेंट्स के बीच में, और उन दो रिएक्टेंट्स के बीच में रिएक्शन होने के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। यहाँ पर आप लोग अपनी बुक के पेज नंबर 2 पर देख सकते हैं, आप लोगों को दिखाया गया है वर्ड इक्वेशन फॉर मैग्नीशियम ऑक्सीजन रिएक्शन। इसमें आपको बताया है मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पर इसका मतलब है कि मैग्नीशियम ऑक्साइड जो है वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहा है, उससे प्रोडक्ट बना है, वो प्रोडक्ट के रूप में यहाँ पर आपको मिला है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इसीलिए जब भी एरो आप बनाएंगे तो वो आप इस तरीके से बनाएंगे कि वो मैग्नीशियम ऑक्साइड की ओर इशारा कर रहा होगा। इसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई और रिएक्शन हुई है, मान लीजिए कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई है और प्रोडक्ट बना है कार्बन डाइऑक्साइड, तो वहां पर आप लोग क्या करेंगे, वहां पर आप लोग लिखेंगे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स, यानी कि एक एरो का निशान बनाएंगे जो कि कार्बन डाइऑक्साइड की ओर इशारा कर रहा होगा, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो आप लोगों को प्रोडक्ट के फॉर्म में मिला है, लास्ट में प्रोडक्ट जो आपको मिला है वो होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो भी प्रोडक्ट होता है उसकी ओर इशारा करता हुआ एक एरो बनाया जाता है। और यहाँ पर आप एक और बात नोटिस कर पा रहे हैं कि रिएक्टेंट्स क्योंकि एक से ज्यादा हैं, यहाँ पर केवल एक रिएक्टेंट नहीं लिया गया है, एक से ज्यादा रिएक्टेंट्स लिए गए हैं। इसीलिए जब ज्यादा रिएक्टेंट्स आप इस्तेमाल करते हैं तो उन सभी को आप कैसे लिखते हैं, ऐड करके, बीच में एडिशन का मार्क लगा के आप लोग जितने भी रिएक्टेंट्स आपने लिए हैं उन सभी को लिख देते हैं। यहाँ पर पेज नंबर 2 पे आप लोगों को मैंने मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन बताई है। तो अगर आप लोगों को लिखना है कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में रिएक्शन हुई है तो आप लिख रहे हैं मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। मान लीजिए कोई और भी रिएक्टेंट्स है इसके साथ में तो आप उनको भी नाम उनका लिख सकते हैं और बीच में प्लस का साइन आप लगाते जाएंगे। जितने भी मान लीजिए आपके रिएक्टेंट्स हैं उन सभी के नाम आप लिख सकते हैं, बस बीच में आप लोगों को एडिशन का साइन लगाते जाना है। उसके बाद आप लोगों को एक एरो लगाना है और प्रोडक्ट जो भी आपका बन करके तैयार होता है उसके नाम आप लोगों को लिख देने हैं। अगर आपके प्रोडक्ट भी एक से ज्यादा बन के तैयार होते हैं तो उनको भी आप लोग एडिशन का साइन लगा करके उनके बीच बीच में लिख सकते हैं। जिस तरीके से आप लोग रिएक्टेंट्स के बीच में एडिशन का साइन लगा के उनको लिख देते हैं, वैसे ही आप लोग प्रोडक्ट्स के बीच में भी एडिशन का साइन लगा करके एरो के बाद में लिख सकते हैं। मैं आप लोगों को ऐसे बता रही हूँ कि एरो के पहले या फिर एरो के बाद में, इसको आप लोग इंग्लिश में दूसरे तरीके से भी कह सकते हैं, एरो के पहले यानी कि एरो के लेफ्ट हैंड साइड में और एरो के बाद में इसका मतलब है कि एरो के राइट हैंड साइड में। आप लोगों के पास दो हाथ है, एक लेफ्ट हैंड है और एक राइट हैंड है, तो आप लोग अपनी बुक में जब देखेंगे तो आप लोगों को एरो में जब आप देखेंगे तो आपको वो एरो इस तरीके से दिखेगी कि एरो के राइट हैंड साइड में आपका राइट हैंड होगा और लेफ्ट हैंड साइड में आपका लेफ्ट हैंड होगा। इसीलिए इसको नाम भी दिया जाता है लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, ताकि आप लोगों को पता चले कि एरो के पहले जो रिएक्टेंट्स लिखे गए हैं वो एरो के लेफ्ट हैंड साइड में लिखे गए हैं और एरो के बाद में जो प्रोडक्ट्स लिखे गए हैं वो एरो के राइट हैंड साइड में लिखे गए हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में वर्ड इक्वेशन किसी केमिकल रिएक्शन के लिए कैसे लिखते हैं वो समझ लिया था। मैंने आपको बोला था कि वर्ड इक्वेशन जो है ये भी कुछ बड़ा लग रहा है, ये भी काफी ज्यादा हम लोगों को लेंथी लग रहा है, हम इससे भी छोटा इसे बना सकते हैं। और जिस मेथड से आप लोग इसको और भी छोटा बनाएंगे उसमें आप क्या करेंगे, उसमें अब आप लोग वर्ड्स की जगह पे केवल सिंबल्स का इस्तेमाल करेंगे। जो भी केमिकल्स आप यूज कर रहे हैं रिएक्शन करवाने के लिए उनके केमिकल फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। आप उनका पता कैसे लगा सकते हैं, एक पीरियोडिक टेबल होती है उसमें जितने भी केमिकल्स हमारे पास हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के केमिकल फॉर्मूले उसमें दिए होते हैं। आप उसमें से याद कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, अपनी जानकारी और बढ़ा सकते हैं। इस चैप्टर को पढ़ने के बाद भी आप लोगों को कुछ कुछ सब्सटेंसेस के केमिकल फॉर्मूले पता चल जाएंगे, लेकिन अगर आप लोग अपनी जानकारी और भी ज़्यादा इन्हांस करना चाहते हैं और भी ज़्यादा बढ़ाना चाहते हैं तो आप लोग पीरियोडिक टेबल को रेफर कर सकते हैं। पीरियोडिक टेबल में आप लोगों को केमिकल फॉर्मूले बहुत सारे सब्सटेंसेस के मिल जाएंगे। सबसे छोटे फॉर्म में केमिकल इक्वेशन को, किसी भी केमिकल रिएक्शन की केमिकल इक्वेशन को लिखने के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को उन सब्सटेंसेस के केमिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए, सिंबल्स पता होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम लोग मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन लिखना चाहते हैं और प्रोडक्ट में मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखना चाहते हैं, तो इन सभी सब्सटेंसेस के हम लोगों को केमिकल फॉर्मूले पता होने चाहिए, तभी हम लोग यहाँ पर सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म में केमिकल इक्वेशन लिख सकते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए। अब यहाँ पर आप लोग आ जाओ पेज नंबर 3 पर और सबसे ऊपर यहाँ पर आप लोग देखो, यहाँ पर आप लोगों को रिएक्शन लिख करके दिखाई गई है मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। प्रोडक्ट क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो पहले आपको क्या लिखना है कि रिएक्टेंट्स कौन कौन से हैं? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, और इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है और प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हुआ है। प्रोडक्ट जो है वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर आप लोगों को मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि मैग्नीशियम का सिंबल क्या होता है। मैग्नीशियम का सिंबल होता है कैपिटल M साथ में G, और ऑक्सीजन जो होता है उसका सिंबल हम लिखते हैं O2, कैपिटल O और उसके राइट हैंड साइड में छोटा सा नीचे 2 लिखा जाता है। और मैग्नीशियम ऑक्साइड आपको लिखना होता है तो वो आप कैसे लिखते हैं? वो आप लिखते हैं कैपिटल M साथ में छोटा G और उन्हीं के साथ में अटैच्ड एक कैपिटल O। इसको हम लोग लिखते हैं ये दिखाने के लिए कि हमने मैग्नीशियम ऑक्साइड लिखा है। यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि हमने मैग्नीशियम सिंगल Mg लिखा है, लेकिन ऑक्सीजन के टाइम पर हमने O2 क्यों लिखा है? मैंने आप लोगों को बताया है कि जो भी केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं वो एक फॉर्म में हम लोगों को नेचुरली मिलते हैं, उस फॉर्म को कहा जाता है उसका एलिमेंटल फॉर्म, उस केमिकल सब्सटेंस का एलिमेंटल फॉर्म। जिस भी फॉर्म में कोई भी एलिमेंटल सब्सटेंस नेचुरली मिलता है उसको उसका एलिमेंटल फॉर्म कहा जाता है। और उस सब्सटेंस को, उस एलिमेंटल फॉर्म को बिल्कुल सिंपलेस्ट फॉर्म में तोड़ दिया जाए, तोड़ते तोड़ते उसको एक ऐसे फॉर्म में ला दिया जाए जिसके बाद हम उसे और ना तोड़ पाए, तो उस सिंपलेस्ट फॉर्म को हम क्या कहते हैं, उसका एटॉमिक फॉर्म कहते हैं। जो एटम होता है वो किसी भी एलिमेंट का सबसे सिंपलेस्ट, सबसे छोटा फॉर्म होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने आप लोगों को बताया था कि ऑक्सीजन जो होता है वो एलिमेंटल फॉर्म में कैसे मिलता है, वो एलिमेंटल फॉर्म में O2 के रूप में मिलता है। और उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, उसका सबसे सिंपलेस्ट एटॉमिक फॉर्म होगा सिंगल O। इसी तरीके से नाइट्रोजन जो होता है वो N2 के फॉर्म में मिलता है, नेचुरली एलिमेंटल फॉर्म में वो N2 के फॉर्म में मिलता है, लेकिन उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा, उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म होगा कैपिटल सिंगल N। तो N2 जो होगा वो नाइट्रोजन का एलिमेंटल फॉर्म कहलाएगा, और कैपिटल सिंगल N जो होगा वो नाइट्रोजन का एटॉमिक फॉर्म कहलाएगा। ये मैंने आप लोगों को इसलिए बताया था ताकि आप लोगों को पता चले कि जब हम लोग बात करते हैं किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की, तो वहां पर आप लोगों को एटम्स बैलेंस करने होते हैं। नंबर ऑफ एटम्स जो होंगे वो एरो के राइट हैंड साइड में और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड में नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स आप लोग ना ही बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि एटम जो होता है उसका कुछ मास होता है जिसे हम एटॉमिक मास कहते हैं। और आप लोगों ने ये पढ़ा हुआ है, आप लोगों को ये पता है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर इट कैन बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। इसका मतलब ये है कि ना तो मास को आप लोग खुद ही पैदा कर सकते हैं ना ही मास को आप लोग खत्म कर सकते हैं। मास को आप सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए क्योंकि एटॉमिक मास जो होता है वो भी एक मास है, आप उसे ना ही खुद से बना सकते हैं ना ही खुद से आप खत्म कर सकते हैं। तो इसी का ध्यान में रखते हुए आप जब केमिकल इक्वेशन लिखते हैं तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ एटम्स एरो के राइट हैंड साइड में और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, दोनों साइड में सेम होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स आप घटा बढ़ा नहीं सकते हैं अपनी मर्जी से। यहाँ तक हम लोगों ने पिछली क्लास में बात की थी, अब हम आज की क्लास को शुरू करेंगे और एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है ये सीखने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किसी भी केमिकल इक्वेशन में जब हमें रिएक्शन लिखनी होती है तो उसमें हमें क्या करना होता है, उसमें हमें नंबर ऑफ एटम्स एरो के लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड में सेम रखने होते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एक हम लोग एग्जाम्पल लेंगे और सीखेंगे धीरे धीरे करके कि एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन किस तरीके से लिखी जाती है। यहाँ पर आप लोग आ जाओ पेज नंबर 3 पर। इसमें आप लोगों को एक रिएक्शन दी गई है, उसका सबसे पहले वर्ड इक्वेशन लिखा गया है। यहाँ पर आपको बताया गया है जो आपने एक्टिविटी 1.3 में किया था, आपने जिंक लिया था, सल्फ्यूरिक एसिड लिया था और उससे बना था जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर आप लोगों को यही वर्ड इक्वेशन लिखनी है, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड एरो जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। ये आप लोगों को पहले वर्ड इक्वेशन में लिख लेना है। उसके बाद आप लोगों को पता करना है कि जिंक का सिंबल क्या होता है, जिंक का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, जिंक सल्फेट का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है और हाइड्रोजन का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है। आप लोगों को ये खुद से पता करने हैं और उसके बाद ही आप लोग एक जो सिंपलेस्ट इक्वेशन होती है वो लिख पाएंगे। आप लोग किसी भी वर्ड इक्वेशन से सिंपलेस्ट इक्वेशन तब ही लिख पाएंगे जब आप लोगों को केमिकल फॉर्मूले पता होंगे अलग अलग केमिकल सब्सटेंसेस के। तो जिंक का जो सिंबल होता है वो होता है कैपिटल Z और उसके साथ में N। जिंक को इस तरीके से लिखा जाता है। सल्फ्यूरिक एसिड को लिखते हैं H2SO4। कैपिटल H उसके साइड में लेफ्ट राइट हैंड साइड में छोटा सा 2, कैपिटल S कैपिटल O और राइट हैंड साइड में O के राइट हैंड साइड में छोटा सा 4 लिखा जाता है। आप लोग अपने बुक में भी देख सकते हैं पेज नंबर 3 पर कि H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड के लिए किस तरीके से लिखा जाता है उसके बाद एक एरो दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हम बताना शुरू कर रहे हैं और प्रोडक्ट बन रहा है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट को कैसे लिखते हैं, कैपिटल जेड और साथ में छोटा एन, उसके बाद SO4 ये भी इकट्ठे लिखा जाता है, SO और O के साथ में राइट हैंड साइड में नीचे छोटा सा 4 लिखा जाता है। ये तरीका है लिखने का कि जिंक सल्फेट हम कैसे बता रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर क्योंकि दो प्रोडक्ट्स बने हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि प्रोडक्ट्स को भी रिएक्टेंट्स की तरीके से ही जितने भी प्रोडक्ट्स आपके बने हैं उनको प्लस का सिंबल लगा के उनके बीच में जितने भी प्रोडक्ट्स बने हैं सबको आप लोग लिख सकते हैं। तो आपका प्रोडक्ट में एक जिंक सल्फेट बना है और एक हाइड्रोजन गैस बनी है, तो हाइड्रोजन को आप लोग लिख सकते हैं H2 के फॉर्म में, क्योंकि हाइड्रोजन जो होती है वो अपने एलिमेंटल फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में, H2 के फॉर्म में ही नेचर में मिलती है। तो यहाँ पर आप लोग पहले वर्ड इक्वेशन का इस्तेमाल करके उसको सिंपलेस्ट फॉर्म में, उसके केमिकल फॉर्मूले के फॉर्म में भी लिखना सीख सकते हैं। आप लोग page number 3 को रेफर करेंगे और जिंक H2SO4 और जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन इसे कैसे लिखा जाता है ये यहाँ से सीखेंगे और याद भी रखेंगे। यहाँ तक तो हो गया कि आप लोगों ने किसी भी वर्ड इक्वेशन से किस तरीके से केमिकल फॉर्मूलेस का इस्तेमाल करके एक केमिकल इक्वेशन लिख दी। उसके बाद अब नेक्स्ट काम आप लोगों को करना है, आप लोगों ने चेक करना है कि जितने भी रिएक्टेंट्स आपने लिए हैं उसमें जितने भी आप लोगों ने केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं उनके कुछ नंबर ऑफ एटम्स होंगे। उनके नंबर ऑफ एटम्स आप लोगों को पता कर लेने हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में कौन कौन से केमिकल्स के कितने कितने नंबर ऑफ एटम्स आपने इस्तेमाल किए हैं। इसको आप लोग कैसे करेंगे, आप लोग एक टेबल बनाएंगे। आप लोगों ने जितने भी केमिकल्स इस्तेमाल किए हैं उनको आप सबसे पहले लिखेंगे एलिमेंट, जो भी केमिकल्स होते हैं उनको एलिमेंट लिख सकते हैं क्योंकि एलिमेंट उस केमिकल का वो फॉर्म है जिस फॉर्म में वो नेचुरली प्रेजेंट होता है। तो आप लोग सबसे पहले एक टेबल बनाएंगे और टेबल को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट, सबसे पहला वाला जो आप लोग टेबल का पार्ट बनाएंगे उसमें आप लोग लिखेंगे एलिमेंट और जितने भी एलिमेंट्स इस्तेमाल किए गए हैं सबका नाम लिख देंगे। इस रिएक्शन में आपने कौन कौन से एलिमेंट यूज किए हैं, जिंक किया है यूज, हाइड्रोजन किया है, सल्फर किया है और ऑक्सीजन किया है। S जो सिंबल होता है वो सल्फर के लिए होता है, O सिंबल जो है वो ऑक्सीजन के लिए है, H सिंबल जो है वो हाइड्रोजन के लिए है, ZN जो सिंबल है वो है जिंक के लिए। तो एलिमेंट्स ये सारे आपने यूज किए हैं और इन सभी के सिंबल आप लोगों को एलिमेंट हेडिंग डाल के टेबल में 3 पार्ट्स जो बनाए हैं सबसे पहले पार्ट में आप लोगों को एलिमेंट्स के सारे इस तरीके से नाम लिख देने हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें आपको क्या लिखना है, उसमें आपको लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन दी रिएक्टेंट्स और इन दी LHS। जो एरो है उसके लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है सभी एलिमेंट्स के वो आप लोगों को नेक्स्ट कॉलम में लिखना है। उसके बाद थर्ड कॉलम में आपको क्या करना है, थर्ड कॉलम में आप लोगों को नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स लिखना है। जितने भी एलिमेंट्स आप लोगों के पास हैं, जितने भी डिफरेंट एलिमेंट्स आपके पास हैं उनके नंबर ऑफ एटम्स क्या है एरो के राइट हैंड साइड में, वो आप लोगों को थर्ड कॉलम में लिखना है। इस तरीके से आप लोगों का टेबल बन करके तैयार होगा। अब आप ये सीखिए कि आप लोगों को कैसे पहचानना है कि जो एलिमेंट आपने लिए हैं उसके नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में कितने हैं और राइट हैंड साइड में कितने हैं। तो आप लोग आ जाओ column number 2 पर और ये सीखो कि जो एलिमेंट्स आपने लिए हैं उसके लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है रिएक्टेंट्स में या फिर लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर देखो, सबसे पहला एलिमेंट जिसके हम बारे में बात करेंगे वो होगा जिंक। जिंक का कितना नंबर ऑफ एटम आपने रिएक्टेंट्स में इस्तेमाल किया है इसको समझने के लिए, जानने के लिए आप यहाँ पर रिएक्शन जो आपने लिखी है वो आप रेफर करेंगे, उसको देखेंगे। रिएक्शन देखिए, रिएक्शन 1.3 है page number 3 पर। यहाँ पर देखिए, जिंक एक ही बार आपने लिखा हुआ है, जिंक के साथ में कोई नंबर नहीं डाला गया है 1 या 2 या 3 या 4। अगर सिर्फ जिंक लिखा है इसका मतलब एक ही एटम है जिंक का, एलिमेंट जिंक का एक ही एटम आपने रिएक्टेंट्स में यानी कि लेफ्ट हैंड साइड में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ पर आप लोगों के column number 2 में जहाँ पर आप लोग एलिमेंट में रिएक्टेंट्स में कितने एटम्स इस्तेमाल किए हैं वो आपको लिखना था, जिंक के आगे आप लोग लिख देंगे 1। इसी तरीके से अब हम हाइड्रोजन के बारे में बात करेंगे। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा हाइड्रोजन है तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो आप लोग अगर ये चेक करें कि कितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स आपने रिएक्टेंट्स में इस्तेमाल किए हैं तो आप देखेंगे कि वहां पर लिखा हुआ है H2। H के साइड में 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने हाइड्रोजन के 2 एटम इस्तेमाल किए हैं। तो यहाँ पर आप लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स फॉर हाइड्रोजन आप लिख देंगे 2। इसी तरीके से आगे बढ़िए, अगला एलिमेंट है सल्फर। अब सल्फर का चेक कीजिए, जो सल्फर है उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स आपने रिएक्टेंट साइड में इस्तेमाल किए हैं। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि आपने सल्फर का एक ही एटम यूज किया है। सल्फर के आगे ना 2 लिखा है, ना 3 लिखा है, ना 4 लिखा है, तो सल्फर का एक ही एटम यूज किया गया है। तो आप लोग यहाँ पर सल्फर के आगे भी 1 लिख देंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब आप लोग नेक्स्ट एलिमेंट के बारे में बात करेंगे जो कि है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के बारे में अब हम बात करते हैं, जो ऑक्सीजन है उसके कितने नंबर ऑफ एटम्स है रिएक्टेंट साइड में, ये चेक करने के लिए आपको देखना है कि ऑक्सीजन के बगल में, ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में क्या लिखा है, कौन सा नंबर लिखा है। ऑक्सीजन के राइट हैंड साइड में लिखा हुआ है 4। इसका मतलब ऑक्सीजन के 4 एटम इस्तेमाल किए गए हैं। तो उस कॉलम में जहां पर आप लोग नंबर ऑफ एटम्स लिख रहे थे रिएक्टेंट्स के, कितने नंबर ऑफ एटम्स आपने इस्तेमाल किए हैं, उसमें आप ऑक्सीजन के लिए 4 लिख देंगे। तो इसी तरीके से कॉलम जहां पर आप लिख रहे थे नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट्स, उसमें आपने जिंक के लिए 1 लिख दिया, हाइड्रोजन के लिए 2 लिख दिया, सल्फर के लिए 1 लिख दिया और ऑक्सीजन के लिए 4 लिख दिया। डिफिकल्ट नहीं है बच्चों, बहुत इजी है, आप लोग ध्यान से समझ के करेंगे तो आप बहुत इजीली कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम जो आप लोगों को भरना है, उसमें आपको देखना है कि नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट में कितने हैं। जिस तरीके से आप लोगों ने नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट्स में कितने हैं ये चेक किया था, बिल्कुल ठीक वैसे ही आप लोगों को नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट्स में कितने हैं वो चेक करना है। जिंक के लिए सबसे पहले चेक करते हैं नंबर ऑफ जिंक एटम्स कितने हैं प्रोडक्ट साइड में। आप ध्यान से देखेंगे तो आप लोगों को केवल एक ही बार जिंक लिखा हुआ दिख रहा है, जिंक के आगे कोई नंबर नहीं लिखा गया है, 2 या 3 या 4 कोई नंबर नहीं लिखा गया है। इसका मतलब है जिंक एक ही एटम के रूप में प्रोडक्ट में हमें मिला है। तो आप लोग क्या लिखेंगे कि जिंक का एक ही एटम हम लोगों को प्रोडक्ट साइड में मिला है, 1 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट हाइड्रोजन के बारे में बात करते हैं, हाइड्रोजन हमें कितने मिले हैं प्रोडक्ट साइड में। तो यहाँ पर आप ध्यान से अगर प्रोडक्ट साइड में देखें तो आप लोगों को H2 लिखा हुआ दिख रहा है, H के बगल में 2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है 2 हाइड्रोजन के एटम हम लोगों को प्रोडक्ट में मिले हैं। तो आप लोग यहाँ पर क्या लिख देंगे, हाइड्रोजन के आगे 2 लिख देंगे, क्योंकि आप लोगों को नंबर ऑफ हाइड्रोजन ऑफ एटम इन प्रोडक्ट साइड 2 मिला है, 2 हाइड्रोजन के एटम मिले हैं प्रोडक्ट में, इसलिए हाइड्रोजन के आगे 2 लिख दिए हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सल्फर के बारे में। प्रोडक्ट साइड में चेक करिए, प्रोडक्ट साइड में सल्फर जो है वो लिखा हुआ है कितनी बार। सल्फर के आगे ना 2 लिखा है, ना 3 लिखा है, ना 4 लिखा है, सल्फर एक ही बार लिखा हुआ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है सल्फर का एक सिंगल एटम हम लोगों को प्रोडक्ट साइड में मिला है, राइट हैंड साइड में मिला है। तो यहाँ पर आप लोगों को क्या लिखना है, सल्फर के आगे भी 1 लिख देना है। इसका मतलब ये होगा कि सल्फर का एक ही एटम हमें प्रोडक्ट में मिला है। उसके बाद लास्ट ऑक्सीजन के बारे में लिख देंगे, ऑक्सीजन हमें कितने मिले हैं प्रोडक्ट साइड में। आप ध्यान से देखेंगे तो O के राइट हैंड साइड में 4 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ऑक्सीजन के 4 एटम हम लोगों को मिले हैं प्रोडक्ट साइड में। आप लोगों को ये तो पता ही है कि कौन कौन से आप लोगों को केमिकल्स प्रोडक्ट में मिले हैं और कौन से रिएक्टेंट्स में मिले हैं। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है कि जो एरो है उसके राइट हैंड साइड में जितने भी केमिकल्स लिखे हैं वो क्या हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं, और एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने भी केमिकल्स लिखे हैं वो सारे रिएक्टेंट्स हैं। इसमें कोई कंफ्यूजन मत रखना बच्चों, एरो के पहले जितने भी केमिकल्स लिखे हैं वो सारे रिएक्टेंट्स हैं, एरो के बाद में जितने भी केमिकल्स लिखे हैं वो सारे प्रोडक्ट हैं। यहाँ पर खास बात ये है इस रिएक्शन की कि ये रिएक्शन ऑलरेडी बैलेंस्ड है। बैलेंस्ड क्यों है, बैलेंस्ड इसलिए है क्योंकि हर एक एलिमेंट के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में और रिएक्टेंट साइड में दोनों ही साइड में सेम है, तो हम लोगों को ज्यादा मेहनत यहाँ पर नहीं करनी पड़ी क्योंकि इस रिएक्शन में ऑलरेडी सब कुछ बैलेंस्ड है। सारे के सारे रिएक्टेंट, सारे के सारे प्रोडक्ट्स, इनमें जितने भी नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों साइड सेम है। और क्योंकि हम लोगों को लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना होता है, तो उसको फॉलो करने से हमें क्या करना होता है कि हम एटॉमिक नंबर जो है, नंबर ऑफ एटम्स जो है, वो हम चेंज नहीं कर सकते। प्रोडक्ट साइड में भी नंबर ऑफ एटम सेम होगा हर एक एलिमेंट के लिए, और रिएक्टेंट साइड में भी दोनों सेम होने चाहिए, दोनों अलग अलग नहीं हो सकते। हम लोग रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में हर एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम्स बदल नहीं सकते, और क्योंकि इस रिएक्शन में नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट के लिए राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साइड में सेम है, इसलिए हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और ये रिएक्शन जो है, इक्वेशन जो है, वो बैलेंस्ड है। अब हमें दूसरी इक्वेशन चेक करनी है जिसे हमें बैलेंस करने की कोशिश करनी है। नेक्स्ट इक्वेशन जो आप लोगों को केमिकल इक्वेशन दी गई है वो है इक्वेशन 1.4, ये भी पेज नंबर 3 पर ही है। इसमें आप लोगों को बताया गया है कि रिएक्शन हो रही है Fe+H2O एंड इट गिव्स Fe3O4+H2। इसको वर्ड इक्वेशन में अगर आप लोग लिखना चाहें तो आप कैसे लिखेंगे? वर्ड इक्वेशन में इस रिएक्शन को अगर आपको लिखना हो तो आप ऐसे लिखेंगे, Fe की जगह आप लिखेंगे आयरन प्लस वाटर गिव्स फेरस फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इस तरीके से आप लोगों को लिखना है। और इसी को और सिंपलेस्ट फॉर्म में जो लिखा गया है केमिकल फॉर्मूले यूज करके, जो सबसे सिंपलेस्ट इक्वेशन लिखी गई है वो लिखी गई है पेज नंबर 3 पर, इक्वेशन 1.4। इसका मैंने आप लोगों को वर्ड इक्वेशन बता दिया, आयरन प्लस वाटर गिव्स फेरस फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन। यहाँ पर जो आयरन के लिए सिंबल यूज किया गया है वो है Fe, कैपिटल F साथ में छोटा e, तो इस तरीके से हम लोग आयरन को लिखते हैं। वाटर को हम लोग लिखते हैं H2O, कैपिटल H साथ में छोटा 2, जो कि राइट हैंड साइड में लोअर साइड में नीचे की साइड में लिखा जाता है, और साथ ही में इसी के साथ ही में O, इसका मतलब H2O आप लोगों ने लिख दिया, जिसे आप लोग वाटर से रिप्रेजेंट करते हैं। वाटर जो है उसको H2O लिख करके रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट है Fe3O4, जो Fe3O4 है वो है फेरस फेरिक ऑक्साइड जो है वो आयरन और पानी के बीच में रिएक्शन होने के बाद में बना है, और लास्ट प्रोडक्ट जो बना है वो बनी है हाइड्रोजन गैस, तो उसको H2 के फॉर्म में लिखा गया है। तो ये है हम लोगों की केमिकल इक्वेशन। इसे हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले बैलेंस करने से पहले हमें चेक करना है कि इसके नंबर ऑफ एटम्स कितने कितने हैं लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में। तो सेम वही प्रोसीजर आप लोगों को अपनाना है, आप लोगों को एक टेबल बनाना है जिसमें आप लोगों को 3 कॉलम्स बनाने हैं। 3 कॉलम्स में से सबसे पहला कॉलम जो होगा उसमें आप लोग लिखेंगे एलिमेंट, जितने भी एलिमेंट आपने इस रिएक्शन में इस्तेमाल किए हैं उन सभी के नाम आप लोगों को लिखने हैं। तो सबसे पहला कॉलम आप लोग भरेंगे, उसमें आप लिखेंगे जितने भी एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं इस रिएक्शन में हमें पता करनी है, तो पता करते हैं। पहला एलिमेंट है आयरन, जिसको हम Fe के फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो किस तरीके से Fe लिखा जाता है। पेज नंबर 4 पर आप लोग आ जाओ, सबसे ऊपर आप लोगों को रिएक्शन लिखी हुई दिख रही है, रिएक्शन 1.5। इसमें आप लोग देख सकते हैं आयरन जो है वो Fe के फॉर्म में लिखा जाता है। ये आयरन का एक केमिकल सिंबल है। उसके बाद नेक्स्ट कौन सा यहाँ पर एलिमेंट इस्तेमाल हुआ है, नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन, उसको भी आप लोग लिख देंगे एलिमेंट्स के कॉलम में। यहाँ पर आप लोगों को 3 ही आप लोगों ने एलिमेंट्स इस्तेमाल किए हैं, आयरन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तीनों एलिमेंट्स के नाम लिख दिए। उसके बाद नेक्स्ट कॉलम में आइए, नेक्स्ट कॉलम में आप लोगों को लिखना है नंबर ऑफ एटम्स इन दी रिएक्टेंट्स और लेफ्ट हैंड साइड, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में कितने नंबर ऑफ एटम्स है हर एक एलिमेंट के, वो आप लोगों को काउंट करके लिखना है। तो चलिए काउंट करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला एलिमेंट है आयरन, जिसे Fe के फॉर्म में लिखा जाता है। इसके कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं रिएक्टेंट साइड में ये चेक करना है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के पहले वाले साइड में जितने भी केमिकल्स लिखे हैं उसमें चेक करना है कि आयरन के कितने एटम हैं। यहाँ पर आप लोगों को एक ही Fe लिखा हुआ दिख रहा है रिएक्टेंट साइड में, इसका मतलब है कि Fe यानी कि आयरन का एक ही एटम इस्तेमाल किया गया है। तो नंबर ऑफ आयरन के कितने एटम हुए रिएक्टेंट साइड में, 1 लिख देंगे आप लोग। उसके बाद हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स चेक करेंगे, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है H2O लिखा हुआ है, इसका मतलब हाइड्रोजन के बगल में 2 लिखा हुआ है। ये बता रहा है कि हाइड्रोजन के 2 एटम्स इस्तेमाल हुए हैं। तो हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम जो यूज किए गए हैं रिएक्टेंट साइड में वो हो गए 2, तो आप लोग 2 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स यूज हुए हैं रिएक्टेंट साइड में ये चेक करना है। तो एक ही बार O लिखा हुआ है, इसका मतलब एक ही ऑक्सीजन का एटम इस्तेमाल हुआ है। तो कॉलम में कितने नंबर ऑफ एटम इस्तेमाल हुए हैं ऑक्सीजन के, 1, तो आप लोग 1 लिख देंगे। उसके बाद लास्ट कॉलम जो है उसमें आपको लिखने हैं नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स, हर एक एलिमेंट के लिए नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स क्या क्या है वो आप लोगों को लिखना है काउंट करके। नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट्स यानी कि राइट हैंड साइड में जो भी है एलिमेंट्स के वो आप लोग काउंट करके लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला एलिमेंट है आयरन यानी कि Fe, नंबर ऑफ एटम्स ऑफ Fe यानी कि आयरन प्रोडक्ट साइड में कितने हैं आप लोग चेक करेंगे तो आपको दिखाई देगा कि Fe3 लिखा हुआ है। Fe के आगे Fe के बगल में 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आयरन के 3 एटम प्रोडक्ट में हमको मिले हैं। तो यहाँ पर आप लोग नंबर ऑफ एटम्स ऑफ आयरन इन प्रोडक्ट 3 लिखना है, तो 3 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स आप लोगों को प्रोडक्ट साइड में मिले हैं ये चेक करना है। तो आप चेक करेंगे तो आपको दिखेगा कि H के बगल में 2 लिखा हुआ है, इसका मतलब है प्रोडक्ट साइड में हम लोगों को नंबर ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट जो है उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, 2 है, इसीलिए आप लोग क्या लिखेंगे, 2 लिख देंगे। उसके बाद नेक्स्ट है ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने नंबर ऑफ एटम्स हम लोगों को प्रोडक्ट साइड में मिले हैं राइट हैंड साइड में एरो के मिले हैं ये चेक करना है। ऑक्सीजन आप लोगों को दिख रहा होगा, ऑक्सीजन के बगल में 4 लिखा हुआ है, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन के 4 एटम बन करके तैयार हुए हैं प्रोडक्ट्स में। तो आप लोग क्या लिख देंगे, आप लोग ये लिख देंगे कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड में 4 हैं, तो 4 लिख देंगे अपने कॉलम में। इसी तरीके से आप लोगों को ये टेबल बना करके तैयार करनी है। अब इस टेबल को बनाने के बाद में आप लोगों को एनालाइज करना है, आप लोगों को समझना है कि ये टेबल आपको क्या बता रही है। इस टेबल को आप ध्यान से देखो, आपने जो एलिमेंट्स लिखे हैं सबसे पहले कॉलम में उसके आपने नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड में लिखा है और नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट साइड में लिखा है। उसके बाद आप ये ध्यान से देखो कि आयरन जो है सबसे पहला एलिमेंट, इसके नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 1 है, लेकिन प्रोडक्ट साइड में बन करके कितने नंबर ऑफ एटम्स तैयार हुए हैं आयरन के, 3 बन करके तैयार हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, आपको दिखाई दे रहा होगा कि आयरन का आपने एक ही एटम लिया है रिएक्टेंट में, मतलब इस्तेमाल आपने एक रिएक्टेंट किया है आयरन का, एक ही एटम किया है, लेकिन बन करके आपको 3 आयरन मिल गए, ऐसा कैसे हो सकता है। इसका मतलब आपकी जो इक्वेशन है वो बैलेंस्ड नहीं है, इसे आपको बैलेंस करना पड़ेगा, आपको बराबर करने पड़ेंगे दोनों साइड आयरन के नंबर ऑफ एटम्स को, एरो के दोनों साइड में, एरो के लेफ्ट हैंड साइड में, एरो के राइट हैंड साइड में, दोनों साइड में आयरन के नंबर ऑफ एटम्स को बैलेंस करना होगा, बराबर करना होगा, तभी आपकी रिएक्शन बैलेंस होगी। उसके बाद हाइड्रोजन को चेक करते हैं, नेक्स्ट एलिमेंट है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट साइड भी 2 है और नंबर ऑफ एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इन प्रोडक्ट साइड वो भी 2 है, इसका मतलब हाइड्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स तो ठीक है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है। नेक्स्ट एलिमेंट की बात करते हैं ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट साइड तो 1 है, लेकिन बन करके ऑक्सीजन के 4 एटम मिल गए, ऐसा कैसे पॉसिबल है। अगर आपने एक ही ऑक्सीजन का एटम लिया है तो बन करके भी तो एक ही तैयार होना चाहिए, बन करके 4 तैयार हुए हैं, ये बताता है कि 4 एटम बन करके ऑक्सीजन के तैयार हुए हैं, इसका मतलब आपने 4 ही इस्तेमाल किए होंगे। एटम नंबर ऑफ एटम जो होते हैं एलिमेंट के वो हमेशा सेम होने चाहिए रिएक्टेंट साइड में और प्रोडक्ट साइड में। इस टेबल से आपको ये तो पता चल गया कि आपने जो इक्वेशन लिखी है उसमें हमारे जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ एटम्स जो है अलग अलग एलिमेंट्स के वो सेम नहीं है, इसका मतलब हमारी इक्वेशन बैलेंस्ड नहीं है। यहाँ पर आप लोगों को नंबर ऑफ एटम्स में डिफरेंस दिख रहा है रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड। उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों को अब बैलेंस करना सीखना है, इसी रिएक्शन को, इसी इक्वेशन को हम नेक्स्ट क्लास में बैलेंस करना स्टार्ट करेंगे और सीखेंगे। और आज की क्लास को मैं यहीं पर ख़त्म कर रही हूँ, आपने क्या करना है, आपने जो आज सीखा है उसे रिवाइज करना है और खुद से पढ़ना है। कहीं पर कोई भी डाउट आए तो अपने टीचर से जरूर पूछना है। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।
सुनो किताब से सुनने के लिए आपका धन्यवाद।